तारीख 15 जनवरी दिन बुधवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दास। निर्भया मामले में अभियुक्तों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी।
मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, मर्सी पिटीशन के अलावा जो पिटीशन अपील फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में से, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या सेशंस कोर्ट मूव कर सकता है मुकेश।
कर्नाटक में ईसा मसीह की मूर्ति पर क्यों हो रहा है विवाद। ईरान अमेरिका तनाव का असर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर होगा, सुनवाएंगे दुनिया जहान।
कैंपेन के दौरान सदर ट्रंप ये जरूर कह सकते हैं कि ओबामा ने बिन लादेन को मारा था, लेकिन मैंने बगदादी और सुलेमानी दोनों को मारा है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। दिल्ली गैंगरेप मामले में अब दोषियों को 22 जनवरी के दिन फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों ने आज अदालत को बताया कि नियमों के तहत डेथ वारंट पर कार्रवाई करने से पहले दया याचिका पर निर्णय आना जरूरी है। अगर दया याचिका खारिज भी हो जाती है तो भी दोषियों को कम से कम 14 दिनों की मोहलत मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली की एक अन्य अदालत से भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद 4 सप्ताह तक दिल्ली नहीं आ पाएंगे और आगामी चुनाव तक कोई धरना भी नहीं करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भीम आर्मी ने 20 दिसंबर को पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च करने का ऐलान किया था। इसके लिए पुलिस से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। देश की जनसंख्या में तेजी से गिरावट की आशंका के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जन्म दर बढ़ाने से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को उन युवाओं की मदद करनी चाहिए जो परिवार शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रूस का भाग्य और भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विश्व में रूसी कितने हैं। उन्होंने कहा, जनसंख्या में गिरावट की चेतावनी से हम डरते नहीं हैं। हमारे सामने ये ऐतिहासिक चुनौती है कि अब हम इसका जवाब कैसे तलाशें। हमें न केवल इस मुश्किल से बाहर निकलना है, बल्कि अगले दशक के मध्य तक प्राकृतिक तौर पर अपने जनसंख्या को भी बढ़ाना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उस प्रस्ताव की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2015 में हुए परमाणु करार की जगह कथित तौर पर ट्रंप डील को लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने पूछा कि कोई देश ये कैसे सोच सकता है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के विचार को मानेगा। मुझे नहीं पता कि ब्रितानी प्रधानमंत्री सोच क्या रहे हैं। उन्होंने साल 2015 के परमाणु करार की जगह ट्रंप डील की बात की। ट्रंप ने अब तक केवल अपने वायदे तोड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ही किया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या किया? आपके लिए ट्रंप ने क्या किया? नाटो के लिए ट्रंप ने क्या किया? आपके यूनेस्को के लिए क्या किया? आपने उससे बाहर जाना पसंद किया और ट्रंप के बाहर जाने के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिलिंग ने क्या किया? ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। दक्षिण एशिया में बीते कई दिनों से तेज बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अब तक करीब 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 100 के करीब शव मिले हैं, जिसमें से ज़्यादातर शव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी से बरामद किए गए हैं। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ी हैं और इस वजह से कई इलाकों में पहुँचने में मुश्किल हो रही है। रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए राहत सामग्री पहुँचाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी 39 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीते साल करीब 90 लाख से कुछ कम लोग ही यहां घूमने के लिए पहुंचे। ये आंकड़े गिरावट को दर्शाते हैं। आंकड़ों की तुलना करें तो ये पिछले साल की तुलना में करीब 14% कम है। हालांकि बीते साल की शुरुआती छमाही में हांगकांग घूमने आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन जून में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ये तेजी से गिरावट की ओर आए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में चार अभियुक्तों को फांसी 22 जनवरी को सवेरे 7 बजे दी जानी थी, लेकिन अब ये टल गया है। इन चारों में से एक मुकेश सिंह ने मंगलवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है। इस कारण उसे अब तय दिन पर फांसी नहीं दी जा सकती। सबसे पहले सुनते हैं कि निर्भया के माता पिता के वकील जितेंद्र कुमार झा ने क्या कहा।
ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेनिंग है। अब मर्सी पिटीशन सिर्फ एक 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 कन्विक्ट का आया है, अभी भी 3 कन्विक्ट सोए हुए हैं, और निश्चित रूप से एज सून एज मर्सी पिटीशन इज फाइल, जेल मैनुअल का बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो सेंटेंस है वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा।
आज अदालत में क्या कुछ हुआ वो जानने से पहले श्रोताओं को बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में एक चलती बस में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया था और अदालत ने उन्हें दोषी भी पाया था। बाद में एक दोषी ने सजा के दौरान जेल में आत्महत्या कर ली थी। नाबालिग होने के कारण एक और दोषी को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि बाकी चारों विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 7 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद विनय शर्मा और मुकेश सिंह ने सर्वोच्च अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे बीते कल खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद इन चारों को 22 तारीख को फांसी दी जानी थी, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया की गुहार लगाई। इसी संबंध में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में क्या हुआ जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की कोर्ट से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती से।
देखिए, कोर्ट में अब जो सुनवाई हुई, जस्टिस मनमोहन की कोर्ट था, जैसे सुनवाई शुरू हुई तो मुकेश की तरफ से ये दलील दी गई कि जो लोअर कोर्ट का डेथ वारंट है वो गलत तरीके से इशू हुआ है, उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है, तो इसलिए हाईकोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट की जो जज है जस्टिस मनमोहन, उन्होंने बोला कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने क्यों दूसरे कोर्ट में क्यों नहीं गए, हाईकोर्ट क्यों आए, तो सुनने से साफ मना कर दिया और बोला कि आप अगर चाहो तो सेशंस कोर्ट जा सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुनने से साफ मना कर दिया। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि से मुकेश की जो मर्सी पिटीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है।
लेकिन ऐसे में जब मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका लंबित है राष्ट्रपति के पास, तो क्या फांसी हो सकती है 22 जनवरी को, खासकर मुकेश की?
देखिए, मैं यहाँ पे साफ करना चाहूंगा कि जहाँ तक फांसी का सवाल है, फांसी किसी भी सूरत हाल में जनवरी 22 सुबह 7 बजे की मुकर्रर किया गया वो नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। मर्सी पिटीशन के अलावा जो ये जो पिटीशन अपील फाइल हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट या सेशंस कोर्ट मूव कर सकता है मुकेश। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी सूरत हाल में फांसी अभी नहीं हो सकती जनवरी 22, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि डेथ वारंट इशू होने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार इशू होती है किसी कन्विक्ट को फांसी पे लगाने के लिए। बाकी जहां 3 कन्विक्ट की सवाल है, यानी कि अक्षय कुमार सिंह, पवन और विनय, उनकी फांसी जहां तक है एक क्यूरिटी पिटीशन डिसमिस हो चुकी है, बाकी वो मर्सी पिटीशन फाइल करने के लिए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। अभी उनका पिटीशन अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, मेरी बात हुई थी एपी सिंह से, तो एपी सिंह ने बोला कि हम मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे। किसी भी सूरत में जनवरी 22 को उनको फांसी नहीं लगेगी।
यानी इन तीनों की भी मर्सी पिटीशन जो है अभी फाइल होनी बाकी है?
जी, इन तीनों की मर्सी पिटीशन अभी फाइल होना अभी बाकी है। तो बाकी दो जो कन्विक्ट है उनका भी क्यूरिटी पिटीशन अभी फाइल होना सुप्रीम कोर्ट में बाकी है।
निर्भया बलात्कार मामले में अभियुक्तों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी, जानकारी दे रहे थे सुचित्र मोहंती। और अब बात कश्मीर की, जहां 2G ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। ये कहना है सरकार का। बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को यहां खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से वहां फोन और इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई थी। धीरे धीरे कर वहां फोन सेवा शुरू हुई, फिर सीमित तौर पर इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी गई, लेकिन कश्मीर में पाबंदियां जस की तस रहीं। क्या अब सरकार की घोषणा के बाद कश्मीर के लोगों तक ब्रॉडबैंड पहुंचेगा? इसी मुद्दे पर मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से।
देखिए, ये 5 अगस्त के बाद जब से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एबॉर्गेट किया गया, तो पहली बार ऐसा होगा कि जब جموں صوبے کی ہم بات کریں گے تو یہاں جو ہے پوسٹ پیڈ موبائل سروسز پر جو ہے انٹرنیٹ موبائل انٹرنیٹ شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے, جبکہ یہاں پر پہلے ہی جو ہے براڈ بینڈ سروسز چل رہے تھے. اور کشمیر خطے میں ابھی تک نہ بھی براڈ بینڈ چل رہا ہے وہاں پہ اور نہ ہی موبائل انٹرنیٹ وہاں پہ چل رہا ہے. تو سرکار کے پروکتا جو روہت کنسل ہے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی آج شام, تو اس میں انہوں نے یہ گھوشنا کی ہے کہ کشمیر میں جو ہے جو جتنے بھی سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں یا اور اس میں ایکچولی ہاسپٹلز میں پہلے ہی انہوں نے کسی جگہ سری نگر میں اور دوسری جگہوں پر براڈ بینڈ شروع کیے تھے, اس میں انہوں نے یہ بات ایڈ کی ہے کہ جو ٹور اینڈ ٹریول انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ٹریڈ کو بھی جوڑا گیا ہے جو ویوپاری ہے, تو ان کو بھی انٹرنیٹ براڈ بینڈ کی سویدھا جو ہے اپلبدھ کی جائے گی. اور اس طرح سے پرشاسن نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 ایسے بوتھز جو ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں رہیں گے وہ شروع کیے جائیں گے جہاں پہ براڈ بینڈ سروسز کو شروع کیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کشمیر خطے میں اس پر اس سے کوئی زیادہ بڑا اثر عام لوگوں پر پڑنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی عام لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوں گی. جو انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک کشمیر میں برقرار ہی رہے گا.
لیکن سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو ایک چرن بدھ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے وہ انٹرنیٹ جو ہے کھولنا شروع کرے گی. کشمیر میں عام لوگوں تک انٹرنیٹ پہنچنے میں اور کتنا وقت لگنے والا ہے؟ 5 مہینے کا وقت تو ہو چکا.
دیکھیے سرکار نے سیکورٹی ریزنز کو سائٹ کیا ہے, چرم پنتھ کی بات کہی ہے جو پاکستان سے انہوں نے کہا کہ سپمن سر ہوتا ہے, اور کئی بار کوششیں ہوئی کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم جو ہے لا اینڈ آرڈر یا جو پیس ہے اس کو ڈریل کرے جموں کشمیر میں. یہ سرکار نے ایک ریزن دیا ہے اور ان کو سپریم کورٹ میں بھی اس بات کا کل جواب دینا ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ نے ایک ہفتے پہلے سرکار سے جموں کشمیر سرکار سے یہ جواب طلب کیا تھا کہ آخر جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کی سیواؤں کو کس بنیاد پر بند کیا گیا ہے. تو لیکن 5 مہینے کے بعد بھی اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ فیز وائز یہ ہوگا, تو اس میں میرے خیال سے جس طرح سے کشمیر میں انٹرنیٹ شروع کرنے کی بات کی گئی ہے جو سرکار نے کہا ہے, تو اس میں ایک لمبا سمے لگ سکتا ہے اور عام لوگوں کی پریشانیاں بالکل کم نہیں ہوں گی انٹرنیٹ کو لے کر کے.
جانکاری دے رہے تھے ماجد جہانگیر. اور اب بات کرناٹک کی, جہاں بابا بوڈن گیری درگاہ کے بعد اب یہاں بننے والی عیسیٰ مسیح کی ایک مورتی پر وواد چھڑ گیا ہے. کانگریس کے نیتتو والی پچھلی سرکار نے کنک پورا میں عیسیٰ مسیح کی 114 فٹ اونچی مورتی بنوانے کے لیے زمین دینے کا پرستاو رکھا تھا, لیکن اب راجیہ میں ہندو جاگرن ویدی کے نام کی ایک سنستھا اس کا ورودھ کر رہی ہے. پورا معاملہ کیا ہے سنیے بنگلورو سے عمران قریشی کی رپورٹ.
بیتے سال کرسمس کے دن کی بات ہے, یہ خبر پھیلی کہ کانگریس کے نیتا ڈی کے شیو کمار نے عیسیٰ مسیح کی پرتیما کا شیلے ناس کیا ہے. تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ بنگلورو سے 65 کلومیٹر دور کنک پورا تعلقہ میں عیسیٰ مسیح کی دنیا کی سب سے اونچی گرینیٹ کی پرتیما بنائی جائے گی. راجیہ کی بی جے پی سرکار نے فوراً جانچ شروع کی اور پتا لگایا کہ یہاں 1 ایکڑ کی زمین صرف اسپتال یا انیا سارجنک اپیوگتا کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, اور اس زمین کے لیے 10 لاکھ روپے سرکار کو شیو کمار نے دی تھی. اس مدے کو لے کر سنگھ پریوار نے آر ایس ایس کے نیتا کلر کا پربھاکر بھٹ کو کنک پورا کے ہارو بلے بھیجا ایک ریلی کو سمبودھت کرنے کے لیے. بی بی سی نے ان سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ مسیح کی پرتیما کے خلاف آندولن بابا بوڈن گیری درگاہ اور سبری ملا جیسے ہوگا. اتر میں کلر کا پربھاکر بھٹ نے کہا, وہ تو ہوگا ہی, آندولن آگے چلے گا اور ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اس کو تارکک انت تک لے جائیں گے. یہ تھے کلر کا پربھاکر بھٹ کے شبد. کلر کا پربھاکر بھٹ کو کتھت طور پر کرناٹکا کے تٹیہ علاقوں کو ہندوتوا کے پریوگ شالے کا تبدیل کرنے کا شرے دیا جاتا ہے. 90 کے دشک میں چکمنگلورو کے بابا بوڈن گری درگاہ پر سنگھ پریوار نے وواد اٹھایا کہ صوفی درگاہ پر سجادہ نشین کا جو شاسن ہے وہ غلط ہے, کیونکہ اس صوفی درگاہ کے دیوار کے دوسرے طرف دتاتریہ پیٹا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی نے آنے والے چناؤں میں کئی سیٹیں جیتی, لیکن اسی طرح سبری ملا کا وشے اٹھانے کے بعد کیرلا میں لوک سبھا چناؤں میں بی جے پی کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا. بی جے پی نے سپریم کورٹ کا آدیش کہ 10 اور 50 سال کی عمر کی مہیلائیں سوامی ایاپا کے مندر میں جانے کا ورودھ کیا تھا, لیکن سنگ پریوار کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار نے کہا, मैंने राम मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर बनवाया है और इसके अलावा सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं। वो जो भी करना चाहते हैं करने दीजिए, वो सरकार में है। ये थे डीके शिव कुमार के शब्द। कनकपुरा शिव कुमार का विधानसभा क्षेत्र है और उनका मानना है कि वो ये प्रतिमा बनवाकर अपने समर्थकों का खर्च चुका रहे हैं, लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस मुद्दे पर किसे लोगों का समर्थन मिलता है, कल्लर का प्रभाकर भट्ट को या शिव कुमार को। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अभी अभी रूस से खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वहां अब नई सरकार के गठन के लिए रास्ता साफ हो गया है। रूसी समाचार एजेंसियों के हवाले से मिल रही खबरों के अनुसार पुतिन ने आज संसद की दोनों सदनों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया और कहा कि उनके नेतृत्व में कैबिनेट अपने वायदे पूरे नहीं कर सकी। आज राष्ट्रपति पुतिन ने संविधान में कई बदलावों का भी प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने फिलहाल उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का पद दिया है। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इराक में अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमले किए थे। इसके बाद समझा यह जा रहा था कि अमरीका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है या अमरीका कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका क्या इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के कारण चुप है या ईरान पर कार्रवाई से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज दुनिया जहान में रोशनी डाल रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
दुनिया जहां।
I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
इराकी एयरबेस पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि इस हमले में कोई अमरीकी सैनिक नहीं मारा गया है और न ही कोई नुकसान हुआ है। बयान देते समय राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे लग रहे थे जैसे मानो उन्होंने चैन की सांस ली हो। 3 जनवरी को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर एक अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अमरीका ईरान में तनाव और बढ़ गया था, साथ ही ईरान की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था। ईरान की कार्रवाई के बाद अमरीका ने कोई पलटवार नहीं किया। अमरीका के कार्रवाई न करने को कई चीजों से जोड़कर देखा गया है, इनमें से सबसे बड़ी वजह इस साल होने वाले आम चुनावों को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि चुनावी साल में अमेरिका युद्ध नहीं करना चाहेगा, वहीं ईरान अगर युद्ध करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अमेरिकी चुनावों को प्रभावित कर सकता है? इस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कनाडा अमरीका एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज में प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा कहते हैं कि युद्ध से चुनावों पर असर तब पड़ता है जब उसमें अमरीका और उसके सैनिकों को अधिक नुकसान हो रहा हो। वो कहते हैं,
फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, मगर फिर भी मैं एक कहूंगा कि इलेक्शन समय में अगर कोई लड़ाई हो रही है कहीं बाहर और अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो पक्का इलेक्शन प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होकर निकल आएगा। जैसे अमेरिका का लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जो था उसमें प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेगा उस टाइप का लड़ाई, मगर ईरान में जैसे छोटा मोटा ईरान इशू को लेकर इराक पे जो हमला हुआ, इस टाइप ऑफ सिचुएशन में ज्यादा इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की और उनके एक टॉप जनरल को मार दिया, तो उसमें सबका भय यह है कि ईरान भी कुछ ऐसा हमला करेगा, कर भी चुका है और भी कर सकता है, वो ये अमेरिका का इंटरेस्ट जो मिडिल ईस्ट में है उसके खिलाफ जा सकता है। तो इसलिए जो अनसर्टेनिटी देश के अंदर है उसमें वोटर्स के ऊपर एक प्रभाव डालेगा।
अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनावों के दौरान युद्ध या किसी बड़ी कार्रवाई का फायदा तत्कालीन राष्ट्रपतियों को मिलता रहा है। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का लाभ तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला, तो वहीं अफगानिस्तान में घुसने पर जॉर्ज बुश जूनियर को अपने दूसरे कार्यकाल में लाभ मिला। उनके अफगानिस्तान में जाने पर यह संदेश गया कि वो बहुत मजबूत नेता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमरीका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में लड़ा और उस वजह से वो लगातार 3 बार अमरीका के राष्ट्रपति बने। ईरान के साथ युद्ध करने से क्या डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में लाभ मिलेगा? इस सवाल पर अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि इससे अधिक लाभ तो नहीं हो सकता, लेकिन जनरल सुलेमानी को मारने के बाद एक लाभ डोनाल्ड ट्रंप को ये हुआ है कि उनके खिलाफ महाभियोग के मामले को टीवी कवरेज नहीं मिल रही है। वो कहते हैं,
इम्पीचमेंट के ऊपर जो मुसलसिल मीडिया में कवरेज हो रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हालांकि इम्पीचमेंट का जो हियरिंग शुरू होने वाले हैं वेंसडे से, के बावजूद पिछले 4-5 दिन से मुसलसिल ईरान ही मीडिया साइकिल को डोमिनेट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन्स में अप्रूवल रेटिंग है वो तकरीबन 95% हो गई है। वो जंग तो नहीं करेंगे लेकिन ये मौका अच्छा मिल गया है, खासतौर से वो जो यूक्रेनियन प्लेन को ईरान ने गलती से गिरा दिया और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि ये ईरान को मजबूर कर दे कि वो डिप्लोमेसी की तरफ राजी हो जाए और एक नई डील बनाने के लिए तैयार हो जाए अमेरिका से। लेकिन अगर वो भी नहीं होता और ईरान के साथ जंग शुरू ना हो तो कैंपेन के दौरान सदर ट्रंप ये जरूर कह सकते हैं कि ओबामा ने बिन लादेन को मारा था लेकिन मैंने बगदादी और सुलेमानी दोनों को मारा है।
अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान में जंग अभी भी जारी है। अमेरिका का मानना था कि इराक में उसकी जंग 4-5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन 17 साल बाद भी एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका के $2.5 trillion इसमें खर्च हो चुके हैं। साथ ही अमेरिका का कर्ज $21 trillion है। उस पर कर्ज जरूर है लेकिन अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि ईरान के साथ केवल 25% अमरीकी युद्ध चाहते हैं जबकि 75% चाहते हैं कि इस मुद्दे को कूटनीति या आर्थिक प्रतिबंधों से ही सुलझाया जाना चाहिए।
लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ अगर जंग करें तो ये इराक या अफगानिस्तान जैसी जंगे नहीं होंगी, इसमें ईरान हैज कैपेसिटीज, ईरान वापस हमले करेगा। मिसाल के तौर पे ईरान अपने रीजन के जो दूसरे मुल्क हैं ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया यूएई वगैरह उन पे वो हमला कर सकता है, उनके ऑयल फील्ड्स को तबाह कर सकता है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी एक ही दिन में ठप हो जाएगी। अगर सिवाय अमेरिका के पास जिसके पास एक साल का ऑयल रिजर्व है, दूसरे मुल्कों में एक हफ्ते से ज्यादा का ऑयल रिजर्व नहीं है जापान और यूरोपियन मुल्कों में, और अगर ऑयल की सप्लाई रुक जाती है वहां पर जंग की वजह से तो यूरोपियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज, इंडियन, ये सारे एकदम ठप हो जाएंगे और एक किस्म से ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो जाएगी जो अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता।
रिपब्लिकन समर्थकों के डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहुत दुलारे बने हुए हैं और वो उन्हें फिर से चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं। दूसरी ओर अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अमेरिका में मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि ट्रंप का 43-45% वोट हिलने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं विपक्ष 53% पर ही टिका हुआ है।
अमेरिका की जो इकोनॉमी है और जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्टेबल है कि आमतौर पे मोस्ट लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन इलेक्ट होता है, इसलिए पब्लिक में एक किस्म से एपथी है और वोटर टर्नआउट बहुत ही दूसरे डेमोक्रेसी से कंपैरिजन में बहुत कम होता है। यानी सिर्फ जो लोग एलिजिबल टू वोट है उसमें सिर्फ 60% लोग रजिस्टर्ड टू वोट है, यानी 100 में से 60 इज रजिस्टर्ड टू वोट, और वो जो रजिस्टर्ड है उसमें से भी 60% वोटर टर्नआउट होता है, यानी जो एलिजिबल टू वोट है उसमें से सिर्फ टोटल 36% लोग वोट करते हैं।
वहीं दूसरी ओर महाभियोग का मामला भी ट्रंप को चुनावों में खास नुकसान नहीं पहुंचाता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का मामला सीनेट में गिरना तय है क्योंकि वहां रिपब्लिकन बहुमत में है। मुक्तदर खान कहते हैं,
इम्पीचमेंट तो सिर्फ एक किस्म से यूं कहिए कि जो एंटी ट्रंप लॉबी है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट की जो बहुत ही गुस्से में है, तकरीबन 52-55% अमेरिकन जितना ट्रंप से नफरत करते हैं, शायद ही कोई लीडर के साथ उनकी आवाम ने हेट किया है, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए डेमोक्रेट्स ये प्रोसीजर कर रहे हैं, और अगर डेमोक्रेट्स इम्पीचमेंट से आगे नहीं बढ़ते तो फिर वो वोटर टर्नआउट डेमोक्रेट्स का नहीं होगा। तो इसलिए अपने बेस को, जिस तरह से ट्रंप अपने बेस को गैल्वनाइज करके उनको मोटिवेटेड रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। डेमोक्रेट्स को भी अपने वोटर्स को मोबिलाइज्ड और एंगेज्ड रखने के लिए वो इस तरह की डिसीजन लिए।
ट्रंप को कितनी तगड़ी टक्कर मिलेगी ये डेमोक्रेट उम्मीदवार पर भी तय करेगा कि वो किस तरह से अपनी नीतियों को जनता तक ले जाता है। दूसरी ओर अभी ये साफ भी नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कोई नेता ट्रंप को चुनौती देगा या नहीं। ट्रंप को चुनौती देने के लिए कोई आगे नहीं आता है तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति होते हुए अपने आप ही रिपब्लिकन के उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ बहुत लंबी है और लगभग एक साल तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया में पल पल मुद्दे और परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
और अब खेल की खबरें। आईसीसी ने आज साल 2019 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की। किन भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की नवीन नेगी से।
जी मानसी, आज आईसीसी ने 2019 के लिए क्रिकेट के पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें वनडे मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो खिताब है उनको दिया गया है। रोहित शर्मा ने साल 2019 में कुल मिलाकर 7 सेंचुरी बनाई हैं। और वहीं टेस्ट मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।
आईसीसी की वनडे टीम का भी आज ऐलान हुआ, इसमें किसे किसे जगह मिली है?
जी हां, आईसीसी ने भी अपने वनडे और टेस्ट टीम दोनों का ही ऐलान किया है। अगर मैं पहले वनडे टीम की बात करूं तो उसमें भारत के जो कप्तान हैं विराट कोहली, उनको आईसीसी की वनडे टीम का भी कैप्टन बनाया गया है। और उनके साथ भारतीय टीम के रोहित शर्मा को, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को और चाइनामैन स्पिनर जो हैं कुलदीप यादव, उनको भी जगह मिली है। और टेस्ट टीम की बात करें तो उसमें 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। एक तो भारत के कप्तान विराट कोहली यहां भी हैं और यहां भी वो टीम के कप्तान ही बने हैं। और ओपनर के रूप में मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है। और इसके अलावा विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी दिया गया है।
कोहली को जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है उसकी कोई खास वजह है?
जी बिल्कुल, विराट कोहली को यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में दिखाई उनकी खेल भावना और दरिया दिली के लिए दिया गया है। ये मैच हुआ था 9 जून 2019 को वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ओवल मैदान में, जब भारतीय पारी चल रही थी उस दौरान कुछ भारतीय दर्शक सीमा पर फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को चिढ़ाने लगे थे। उस वक्त विराट कोहली क्रीज पर थे और जब उन्होंने यह देखा तो उन्होंने वहीं से इशारा करके लोगों से कहा, दर्शकों से कहा कि वे स्टीव स्मिथ का ताली बजाकर सम्मान करें। और इसके बाद स्क्रीन पर यह भी दिखा कि जब विराट कोहली और स्मिथ आमने सामने आए तो स्मिथ ने मुस्कुराकर और पीठ ठोककर उनकी खेल भावना के लिए उन्हें शुक्रिया कहा था। मैच के बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी चीजें मेरे साथ होती मैं माफी मांग चुका होता और फिर वापसी कर रहा होता, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर दर्शक मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते। और इसीलिए मैंने उन दर्शकों से कहा कि वे स्मिथ से माफी मांगे और उनके लिए तालियां बजाएं।
लेकिन नवीन, दर्शक स्टीव स्मिथ का मजाक या फिर उन्हें हूटिंग क्यों कर रहे थे?
ये मामला इस मैच से पहले का मामला है। दरअसल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया के ही बल्लेबाज कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट ने मिलकर गेंद से छेड़छाड़ की थी और उसके बाद भी उन्होंने बाद में स्वीकार की थी। और इस मामले में डेविड वार्नर, एक और जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के ही बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, इन तीनों खिलाड़ियों को मिलाकर जो सजा दी गई थी, इनको 1 साल तक क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था। और 2019 में विश्व कप में ये सभी खिलाड़ी वापसी कर रहे थे, खासतौर पे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ वापसी कर रहे थे और इसी वजह से जो दर्शक थे वो मजाक उड़ा रहे थे, तो विराट कोहली ने इसीलिए उनका सम्मान किया, लोगों से कहा कि उनका समर्थन करें।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली गैंगरेप मामले में अब दोषियों को 22 जनवरी के दिन फांसी नहीं दी जाएगी क्योंकि एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत दे दी है। देश की जनसंख्या में तेजी से गिरावट की आशंका के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को उन युवाओं की मदद करनी चाहिए जो परिवार शुरू करना चाहते हैं। दक्षिण एशिया में बीते कई दिनों से तेज बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से अब तक कम से कम 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में अकेले ये आंकड़ा 100 के पार है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।